हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भगवान की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज मेरे मन में आ रहा था कि भक्तों को प्रश्न पूछने का अवसर दूं और जो भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर सुनने में बहुत आनंद आता है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न भगवान से संबंधित, और उसका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि मैं 7 दिन से लगातार बोल रहा था, बीच में कोई प्रश्न नहीं है। तो माइक दे देना चाहिए, जिसको प्रश्न करना हो माइक पर प्रश्न करें, है ना, दूसरा माइक उसको स्टैंड से निकाल करके मुक्त कर
देना चाहिए।
ये सब प्रश्न का मतलब ये नहीं कि फालतू पूछा है। प्रश्न का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी पूछा है, इसे आपको क्या मतलब है? कैसे जानते हैं कि स्वयं किस भगवान की बात करते हैं, कब करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? ऐसे फालतू प्रश्न कर रहे हैं, वो तो मूड है, गधे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि दुनिया को कौन बनाया, कौन हवा बनाया, पानी बनाया, पृथ्वी, सूरज का प्रकाश कौन दिया। कहते हैं कि भगवान को भी पान पूछिए सावधानी से। भगवान माने मैं पूछता हूं, आप क्या समझते हैं? भगवान के कर्म पर प्रश्न हो रहा है तो मैं पूछता हूं, आप भगवान को कुछ समझे, क्या समझे? आप पूछ रहे हैं भगवान ने काम क्यों किया, तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान माने क्या हुआ। आप उत्तर दीजिए, घबराइए मत। ये तो मैं सुन समझ रहा हूं प्रश्न, मेरे प्रश्न क्या भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि भगवान माने आप क्या समझते हैं? अच्छा, हाँ ये तो आपका परिचय हुआ, परम पिता। हाँ वो ठीक है, परम पिता है। तो साधारण पिता का मतलब समझ में आता है ना, कि उससे हमारा जन्म हुआ है। वो परम पिता है, इसका मतलब सबका जन्म उन्हीं से हुआ है ना, और सभी जीवों का और सभी वस्तुओं का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीजों का भी जन्म उन्हीं से हुआ है, ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र में भगवान की जब परिभाषा दी गई है, डिफिनेशन, तो यही कहा गया है जन्मादेश्य जतः, जिससे इस जगत का, जीवों का जन्म आदि होता है, जन्म पालन और प्रलय होता है, वो है ब्रह्म, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ऐसे ब्रह्म की अनंत शक्तियां जीव भी भगवान की एक शक्ति है, जीव अनंत है, लेकिन भगवान एक है। वैसे भी अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए रहते हैं, लेकिन भगवान एक है। तो शास्त्र बताता है कि भगवान ने यह सृष्टि जो की है इसके दो लक्ष्य हैं। एक तो प्रलय काल में जो जीव सुप्त रहते हैं उनको उस समय शरीर नहीं रहता है, वो सूक्ष्म शरीर में लिपटे सोए रहते हैं। तो भगवान ने जगत की सृष्टि करते हैं कि ये जगें, खाएं, पिएं, काम धंधा करें। हरे कृष्ण, ठीक करो। जैसे मान लीजिए किसी पिता के चार पांच पुत्र हों और सब रात के समय सोए हों और अब सूर्योदय होने वाला है फिर भी सोए हैं, तो पिता उनको जगाएगा, उठो, नहाओ धोआओ, काम करो, क्या पड़े हो। तो भगवान अनंत कोटि जीवों को देह देते हैं और जगत निर्माण करके उनको भोग की सुविधा देते हैं। ये भोग भोगे शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि का आस्वादन करें, और दूसरा उद्देश्य है कि इस तरह से जी करके सुख से और मेरा स्मरण करें। प्रलय काल में सब सुप्त रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के दो उद्देश्य हैं कि ये सृष्टि के समय सुख भोगे, काम करें और मेरी भक्ति करें। भागवत के दशम स्कंध के 87वें अध्याय में लिखा गया, मात्रार्थम च भवार्थम च, दो उद्देश्य लिखे गए, हम लोग खाएं पिए, ठीक से जिए और उनका स्मरण करें, इसके लिए उन्होंने सृष्टि किया। माया नहीं, माया नहीं हुआ, खाना पीना बोलना चलना ये सब माया नहीं है। माया तब है जबकि हम ये सोचते हैं कि हम बनाए हैं ये चीज, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, और जो मन करे वो खाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मांस खाता है तो मांस खाने वाला माया में है, लेकिन वहीं कोई भगवान का प्रसाद खाता है तो माया में नहीं है। तो कोई सोता है इसलिए कि मुझे सवेरे मंगल आरती में उठना है तो उसका सोना माया नहीं है, सोना भी भक्ति है। काम करता है परिवार को पोषने के लिए, अपने को पोषने के लिए। तो इस तरह से अगर शरीर को चलाने के लिए काम कर रहा है तो ये माया नहीं है, माया है अपने को स्वतंत्र समझकर कैसे बोल रहा है, माइक कभी ऊंचा होता है कभी नीचा होता है। तो माया है भगवान को भूल करके कुछ भी बोलना, खाना पीना, कुछ भी करना, लेकिन भगवान की याद करते हुए अगर कोई कुछ काम करता है तो वो माया नहीं है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, युद्ध करने का मतलब मार काट करो, दूसरे की छाती में बाण मारो, गला काटो, इस तरह की हत्या की बात कर रहे हैं भगवान, उनको मारो। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और इनसे युद्ध करो। तो युद्ध जैसा काम भी जब माया नहीं हो सकता है तो खाना पीना कैसे माया हो जाएगा। माया तब है जब हम भगवान की बिल्कुल याद नहीं करते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, बस इसी तरह से खाएं पिए, तो ये माया है। तो भगवान दोनों के लिए सृष्टि किए, खाए पिए मेरा भजन करे। ऐसे भी भगवान नहीं कर सकते थे कि मेरा भजन करो और खाने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन में आदमी परेशान हो जाएगा, है ना, ये सब भक्त लोग हैं ये दो दो तीन दिन बाद खाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जाता। नहीं, भक्त बने हो केवल ईश्वर का स्मरण करो और खाना माया है बंद करो, उसे नहीं कह सकते। इसलिए तो भगवान ने सुविधा दिया तो करने के लिए।
भगवान ने बोला माया से बच के रहो, भगवान ने माया बनाई
क्यों? बच के हो तो माया बनाए क्यों? माया के द्वारा ही तो सृष्टि किए हैं। सरकार आपके गांव में बिजली का तार भेजी है तो लिखती है ना कि सावधान, लिखती है ना इतना वोल्ट है सावधान। तो कोई कहे कि क्या जरूरत है इसको भेजने, जरूरत है ना, ये पंखा चलेगा बिजली जलेगी और कोई छू करके मर जाए तो सरकार पर केस करेगा क्यों बिजली दिया हमको। भगवान के क्या चला चलती पल जान गए कि बदलने पर बोलेगा है, वहां से सब हो रहा है यहां से सब मतलब है। इनका प्रश्न है कि भगवान ने माया बनाया क्यों? भगवान की तो माया शक्ति है जो सभी जीवों को शरीर देती है, भोजन देती है, स्थान देती है, ये सब चीज माया के द्वारा रचा हुआ है। तो इसकी बहुत उपयोगिता है, जरूरत है, लेकिन सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। तो आपका क्या विचार है कि भगवान माया बनाए वो गलत किए हैं? फंसते जा रहे हैं तो इसमें भगवान का दोष है, है?
माया की परिभाषा
है,
माया की जो हम समझते हैं वो तो कह सकते हैं कि जो हार गए,
गलती आपकी है ना। तो भगवान पर क्यों क्वेश्चन करते हैं क्यों बनाए, इसका मतलब कि भगवान गलती कर रहे हैं। जैसे सोचिए क्यों बनाए, इसी के द्वारा सबको वो देह दे रहे हैं और देह से खाने के लिए पहनने के लिए सब चीज माया के द्वारा बनाया हुआ है। ये कपड़ा या माला, जूता, पुस्तक, देह, भोजन, रेस्टोरेंट में, होटल में, घर में जो ही बन रहा है सब माया ने ही दिया है ना। ये माया जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दूसरी शक्ति देती है। तो भगवान माया के द्वारा सब चीज बनाए हैं और नियम बनाए हैं कि ये खाओ, ये बोलो, ये पहनो, ऐसे रहो, बहुत सी बातें भगवान ने बताया। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, किसी व्यक्ति में जो काम वासना है अगर वह धर्म के अविरुद्ध है, अनुकूल है, तो वह मैं हूं, इतना पवित्र है। कोई व्यक्ति संतुष्ट है और अपनी पत्नी से ही केवल साथ करता है, संग करता है, इस प्रकार की काम वासना से यदि पुत्र उत्पन्न होता है, संतान होती है और धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं है, तो हमेरा स्वरूप भगवान बोल रहे हैं। तो माया ने देह दिया है, इसके द्वारा सृष्टि करनी है और कार्य करना है, बोलना है, और भगवान की भक्ति भी होगी इसी से, इसी देह से। तो भगवान ने यही सोच करके सब सृष्टि की है। भगवान पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया इसको क्यों बनाए, इसका मतलब जब बना रहे थे तो आप नहीं थे, नहीं तो उनकी हेल्प किए होते कि ऐसे कीजिए, ये मत कीजिए। है आप क्या सोचते हैं, ये भगवान जब सृष्टि कर रहे थे तो आप होते तो उनको मना करते कि ऐसा मत कीजिए, ये मत बनाइए, ये बनाइए। जैसे क्यों क्वेश्चन होता है भगवान क्यों बनाए, बनाए हैं तो उसके बाद कैसे यूज करेंगे, ये भी बनाए हैं, बताए हैं ना भगवान। कोई कारखाना से कोई यंत्र बनाता है, जैसे मान लीजिए टेप रिकॉर्डर या कंप्यूटर या कार, तो कैसे यूज करेंगे वो कंपनी ही कुछ डिस्क्रिप्शन देती है, डिस्क्राइब करते हैं लिटरेचर की, ऐसे इसको यूज करना है, पेट्रोल से चलेगा कि डीजल से चलेगा। अब कोई डीजल के बदले बालू डाल दे, पानी डाले, कहे कि चलता ही नहीं, कैसे चलेगा? भगवान ने शरीर दिया है तो उन्होंने नियम बनाया है, शास्त्र दिया है, उस शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए। और भगवान ने बहुत कृपा किए हैं, वेद शास्त्र दिए, उनका क्या स्वरूप है, उनके साथ क्या संबंध है, और माया के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं से हम किस तरह यूज करें, कैसे रहें, ये सब कुछ का वर्णन। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, और भी महाभारत रामायण ग्रंथ में जीव को जीने के लिए कला सिखाई गई है, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए। ये प्रश्न करना कि भगवान क्यों बनाए, इसका मतलब भगवान के साथ बहुत भारी बगावत हो रहा है, जो गलत किए हैं। इस तरह के प्रश्न भगवान पर उठाया जाए तो व्यवहारिक प्रश्न होने लगे।
कलाम महाराज जो है वो अपनी पिता की आज्ञा नहीं
है, वो उत्तम पुत्र कुछ नहीं है, वो उत्तम डिवोटी है। जो उत्तम पुत्र, पुत्र शब्द पिता से संबंध बता रहा है, उत्तम पुत्र वो है जो पिता के मन की इच्छा को जान करके पूरा कर दे, आज्ञा न देना पड़े, वो जान ले कि पिताजी ये चाहते हैं, जगे हैं तो उनको पानी चाहिए, को ये चाहिए, वो जान जाए, रोज रहते रहते जान जाएगा ना कि पिताजी ये चाहते हैं, तो पिता के मन की बात को जान करके जो पूरा कर दे वो उत्तम पुत्र है, और जो कहने पर आज्ञा पालन करे बोलने पर तो सेकंड क्लास का पुत्र है, और कहने के बाद कर दे लेकिन भार मान करके करे, श्रद्धा से ना करे तो थर्ड क्लास का पुत्र है, और जो आज्ञा देने पर भी बिल्कुल आज्ञा पालन न करे, माता पिता की सेवा न करे, तो पुत्र है ही नहीं, ये भागवत कहता है। बिल्कुल फोर्थ क्लास में भी उसको नहीं रखा गया। लेकिन प्रहलाद महाराज कोई पुत्र भाव से नहीं थे, ना वो किसी के भाई थे, ना कुछ थे, वो भगवान के भक्त थे बस, और उनका पिता भगवान का भारी विरोध कर रहा था, भगवान से बैर ठाना था कि वो हमारे भाई को मारा है, ये किया है, वो किया है, और उसी विष्णु का भजन करने लगा, तो इससे हिरण्यकश्यपु को क्रोध हुआ, तो उस भगवान की निंदा करता था, प्रहलाद महाराज की जान मारना चाहता था, अतः प्रहलाद महाराज उसका साथ नहीं दिए, तो ठीक किए। प्रहलाद महाराज के उदाहरण द्वारा आप ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि उत्तम पुत्र थे या नहीं थे, उत्तम भक्त थे। गोपियों के बारे में आप प्रश्न कीजिए कि वो सती स्त्री थी कि नहीं, वहां प्रश्न ही नहीं है, वो भगवान की सती थी, न कि जड़ मनुष्यों की, भगवान की प्रियाएं थी, उस विषय में वो सती शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है, वहां पर लौकिक धर्म लागू नहीं किया जा सकता। और पुत्र भाव पिता भाव ये सब लौकिक है, लोक में भी उसका स्टैंडर्ड है, लेकिन भक्ति के साथ तो उत्तम पुत्र वही है जो राम का भजन करे, कृष्ण की भक्ति करे, वही उत्तम है, ऐसा समझना चाहिए। और प्रश्न
करते हैं कि और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि आप आपकी सेवा करना ही भगवान की सेवा की बात है। सारे लोग बहुत ज्यादा ऑफिस आते हैं तो अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं, ये भगवान ने कहा है, जो ये बात है आखिरी तरफ नहीं है, इसके बारे में कोई काम नहीं।
वो लोग कहते हैं, आप क्या कहते हैं है? उनको आप क्या कहते हैं? जब वो लोग बोलते हैं ऐसे तो आप कुछ चुप रह गए हैं कि आप कुछ कहे हैं है? उन लोगों से आप कुछ कहे कि वो बस बोलने दिए क्या? देखिए लोक व्यवहार अलग चीज है और इसके साथ ही साथ परम अर्थ परमार्थ अलग। भगवान की भक्ति करते हुए ही लोक व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में राइट टाइम जा रहा है, सब काम ठीक से कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उघोर नरक में गिरेगा। इस जीवन में भी अशांत रहेगा और मरने के बाद तो नरक में उसका आरक्षण है ही। भगवान को भूल करके कोई कितना भी अच्छा काम करे वो अच्छा नहीं है। भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत बड़ा उपकार है भगवान का। ये पृथ्वी संपूर्ण भगवान बनाए हैं। आज देख रहे हैं मनुष्य कितना महंगा दाम ले रहा है इस जमीन का। अभी मैं नोएडा से आ रहा था तो एक भक्त बताए कि कहीं पर एक वर्ग गज जमीन 1.25 लाख रुपए का बिक रहा है। इस हिसाब से अगर पृथ्वी का दाम जोड़िए, ये तो सब भगवान का बनाया हुआ है ना। किसी दिन भगवान का नोटिस आवे कि पृथ्वी खाली करो, चलो हटो, मैं ही नहीं रहने दूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी को कम सुनाई पड़ता होगा तो उसको कम सुनाई पड़ेगा, क्या किया जा सकता है। हाँ, तो ये प्रश्न है कि जो लोग ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, अपना काम धंधा करना चाहिए, भगवान की क्या जरूरत है, तो एक नंबर के बेईमान है वो लोग। भगवान सब कुछ दिए हैं। आप प्रकट देखिए कि ये इतना महंगा पृथ्वी बिक रही है और पृथ्वी में रखे हुए पेट्रोल, सोना, हीरा, डायमंड, कोयला, अवरक, लोहा, इस्पात, ये सब कुछ पृथ्वी में से निकल रहा है। कौन बनाया इसको? किस सरकार ने बनाया? मतलब अंग्रेजों ने डाला था कि मुगलों ने डाला कि भारत की वर्तमान सरकार ने डाला? कौन डाला है पृथ्वी के भीतर है सब चीज, जरा विचार कीजिए। उसको यूज करने निकालने के पहले कोई सोचता है कि किसने दिया है? जिस प्रभु ने सब पृथ्वी दिया, देह दिया, सब कुछ सुविधा दिया, सूरज बनाया, हवा पानी आदि बनाया है, जीने में इतनी मदद कर रहे हैं, वो कहते उनके भजन की क्या जरूरत है, हम ईमानदार हैं। भगवान की भक्ति के बिना कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में कुछ चोर घुसें और चोरी करें घर का सामान, और कहीं एक पेड़ के नीचे या नदी के किनारे ले जाएं और कहें ये भाई देखना बेईमानी न हो, ईमानदारी से बांटो, चोरी किए हुए धन को और कहते ईमानदारी से बांटो, उसमें से एक पैसा भी लेना क्या ईमानदारी है? और उसी समय पुलिस को पता लग जाए बांटते समय ही, तो वो उनको घेर करके जो डंडा से पीटना चालू करेगी पुलिस, तो उनकी ईमानदारी निकाल देगी ना। चोर क्या ईमानदार हो सकते हैं? जिस हरामी को ये पता ही नहीं है कि पृथ्वी कौन बनाया, ये पेट्रोल किसने पृथ्वी में डाला है, और ये गाड़ियां जो बन रही हैं, भगवान बन रहा है इसके लिए लोहा लकड़ प्लास्टिक ये सब कौन बनाया पता ही नहीं है, वो कैसे ईमानदार हो सकता है? वो तो एक नंबर का बेईमान है। बनाने वाला जिसका धन है उसके बारे में जानता ही नहीं है, बस केवल खाना जानता है, ये निकालो ये करो, ये भवन बनाओ विमान बनाओ कंप्यूटर बनाओ ये बनाओ, ईश्वर कौन है किसने देखा है? अरे तुमने नहीं देखा है बात मानते, लेकिन तुम्हारा बाप बनाया है क्या है सब चीज? कौन बनाया है? मनुष्य होने के नाते इतना तो सोचना जरूरी है ना कि कौन बनाया। हमारा जन्म हुआ तो हम कुछ लेकर नहीं आए, अगर हमारे पिताजी से पूछिए कि आप लेकर के आए थे कुछ मिट्टी कुछ पानी कोई नदी लेकर के आए, तो वो कहेंगे नहीं वो भी खाली हाथ आए थे। तो दादा से पूछा जाए आप, वो भी खाली हाथ आए थे। तो पहले किसी ने बनाया है ना, सब तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, और यहां ईमानदार बनते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म करो, भगवान की पूजा की क्या जरूरत है? ये सब असुर हैं वास्तव में, बुद्धि नष्ट हो गई है। ये सब कुछ भगवान का है, भगवान की याद करनी चाहिए, और भगवान का भजन करते हुए यदि आदमी काम धंधा करे तो ठीक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पृथ्वी पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं सबका कॉमन आधार है पृथ्वी, है ना? बस चाहे ट्रक या बाइसिकल या मोटरसाइकिल कार ट्रैक्टर टेम्पो जितने भी हैं, इनका मूल आधार क्या है? पृथ्वी। कहीं भी चलेंगे, इनका साइज भिन्न भिन्न हो सकता है, गति में भी स्पीड में भी अंतर हो सकता है, सब कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर ही चलना है इसमें अंतर नहीं हो सकता। भले कोई 100 के स्पीड से चले या कोई 1 किलोमीटर के स्पीड से चले, लेकिन पृथ्वी कॉमन आधार है। इसी तरह से कोई व्यक्ति भले गृहस्थ है या सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें भेद है ठीक है, और कोई ब्राह्मण है कोई क्षत्रिय है कोई वैश्य है शूद्र है कोई क्रिश्चियन है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ये सब भेद थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन सभी भगवान के हैं, भगवान ही सबको पाल रहे हैं, भगवान सबको दिए हैं, इसलिए भगवान का भजन करना सबके लिए कॉमन धर्म है। भगवान को विसार करके व्यक्ति अगर जीवन जी रहा है तो वह बिल्कुल असुर है पशु है और उसकी दुर्गति होती है। यह ईमानदारी की बात है, भाई जिसने हमारा सब कुछ किया है कम से कम उसको याद तो किया जाए, उसको प्रणाम तो किया जाए। हम तो बदला तो चुका नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पहृतम अश्नामी प्रयतात्मन। जो व्यक्ति प्रेम से मुझको पत्ता पुष्प फल या जल भी देता है तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। जो सारा दिए हैं वो कहते हैं हमको कोई पत्ता देता है फल देता है फूल देता है तो मैं स्वीकार करता हूं, पानी स्वीकार करता हूं। लेकिन ये बेईमान लोग रोज कई लीटर पानी पीते हैं कई बार खाते हैं लेकिन भगवान को नहीं अर्पण कर सकते, और जबकि भगवान ने सब लौटा देते हैं प्रसाद बनाकर, पर भोग लगाने में नानी मर जाती है। अब ये भोग लगाना ही बहुत भारी परिश्रम हो गया, कहते क्या जरूरत है, और भगवान खाता थोड़े है, ऐसे कहते ऐसे लोग बोलते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मैं खाता हूं अस्नामी अगर प्रेम से कोई देता है, और भगवान कई ऐसे उदाहरण हैं भगवान के जबकि उन्होंने इन सब चीजों को स्वीकार किया है प्रकट हो करके। मूर्ति पूजा के बारे में है, कई बार मूर्ति ने स्वीकार किया है। एक वृंदावन में मंदिर है, आज भी है, मंदिर और मूर्ति दोनों है, रसिक बिहारी मंदिर है। जब बांके बिहारी जी के पास से जाते हैं उधर बनखंडी महादेव के तरफ तो बीच रास्ते में वो मंदिर है रसिक बिहारी जी। एक बार की बात है, भगवान के लिए पुजारी पगड़ी बांध रहे थे, पगड़ी बांध करके उसके बाद मोर पंख बांधा जाता है। भगवान कृष्ण गोपाल हैं, गाय चराते हैं, इसलिए पगड़ी बांध करके जाते हैं घाम में इधर उधर। तो पुजारी पगड़ी बांध रहा था, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और जब ही बांध कर कंप्लीट करता था तो रसिक बिहारी जैसे सिर हिला देते थे, पगड़ी गिर जाती थी। ये घटना लगभग 8-10 बार हुई। जब ही पुजारी बांध करके अल्टर से उतरता था तब ही पगड़ी गिर जाती थी। तो पुजारी को क्रोध आ गया कृष्ण पर, भगवान पर। वो सख्य भाव, मित्र भाव से भगवान की भक्ति करता था, कृष्ण हमारे फ्रेंड हैं। तो गाली दे करके पुजारी कहा कि अरे सारे जब मेरा बांधा हुआ पसंद नहीं है तो खुद क्यों नहीं बांध लेते हो। इसके बाद ठंडा हो गया ठाकुर जी, वो पगड़ी नहीं गिरी उसके बाद। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और उसी मंदिर की घटना है जब पुजारी वो बूढ़े हो गए, वही पूजा करते थे। तो एक दिन की बात थी, सवेरे से शाम तक तो पूजा करते ही थे, मेहनत करते थे। एक दिन पंखा झल रहे थे भगवान को, पंखा झल रहे थे, तब तक पंखा झलने में थोड़ी सी झपकी आई और पंखा भगवान को ठक से लग गया यहां पर। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, सब लोग वृंदावन में कहते हैं। पंखा थोड़ा सा लगा, तब तक ठाकुर जी मूर्ति में है, मूर्ति स्वरूप ही है, उन्होंने एक तमाचा मारा पुजारी को और कहा कि ऐसे ही पंखा झला जाता है, तुम्हारा पंखा लग गया मेरे सिर से। तो पंखा फेंक दिए और जाकर के सो गए पुजारी, कहे कि सवेरे से शाम तक मर रहा हूं तुम्हारी सेवा में और थोड़ा सा पंखा लग गया तो तुम तमाचा मारोगे, मैं ये सेवा नहीं करूंगा। वो जाकर के सो गए। तो उनके गुरु महाराज जो भगवान की स्थापना किए थे वो आए उसी दिन। तो आए तो देखे कि कृष्ण का श्रृंगार नहीं हुआ, मूर्ति का श्रृंगार नहीं हुआ है, कोई भोग लगा है न कुछ हुआ है। तो बाद में जो होने लगे, पुजारी कहाँ है, पुजारी कहाँ है, तो गए तो देखे वो सोया है। तो गुरु जी ने पूछा कि अरे तुमने भगवान की सेवा नहीं किया, रसिक बिहारी जी की सेवा नहीं किया, इधर सो रहे हो। तो वो कहते हैं उसका मन बहुत बिगड़ गया, सवेरे से शाम तक इतना मेहनत करता हूं, थोड़ा थक गया था और पंखा लग गया उसके ललाट से, तो इस पर तमाचा मारा है, देखिए गाल लाल हो गई है और पांचों चारों अंगुली के निशान, और निशान था, जोर से मारा था भगवान ने देखिए निशान। गुरु जी तो देख करके दंग हो गए थे, इतना बड़ा सौभाग्य इसका कि भगवान तमाचा मारे हैं। बहुत प्रसन्न हुए, उसकी प्रशंसा करने लगे और फिर कहने लगे कि मान लो भगवान ने तमाचा मारा तो तुम सेवा क्यों रोक दिया। वो तो कहे कि यही करेगा, इतना सेवा करने के बाद भी तमाचा मार रहा है। तो गुरु जी उनको लेकर के गए मंदिर में और ठाकुर जी से भगवान ने पूछा, गुरु महाराज ने पूछा, तुम इसको तमाचा मारे हो? तो ठाकुर जी ने कहा हां, ये पंखा झल रहा था, मुझे घाव लग गया इसलिए मैंने मारा। तो अब तो बिना खाए रहोगे ना, गुरु जी ने कहा, अब तो ये सो रहा है, अब ना भोजन बनाए ना श्रृंगार करेगा ना कुछ करेगा, तब तो ऐसे ही रहो, तुम क्षमा मांगो इससे, भगवान से कहे क्षमा मांगो। तो भगवान हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे पुजारी से, ठीक है गलती हो गई और अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब पुजारी उठकर फिर श्रृंगार सेवा सब करना, ये बिल्कुल सत्य घटना है। पर गधों के लिए, मूर्खों के लिए भगवान अभी पत्थर ही रह गए है ना। वो मंदिर में देखेंगे चलो चलो तो पत्थर खड़ा है, कौन प्रणाम करे, कौन प्रणाम करे, कौन भोग लगाए। तो ये तो अपनी स्थिति लोगों की है, लेकिन वास्तव में भगवान हैं और सबके पालक हैं, सबके जन्मदाता हैं, सबको दे रहे हैं। विश्वास करके उनका भजन करना चाहिए। गृहस्थों के लिए कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटा भजन करें, लेकिन कुछ भजन तो अनिवार्य है। ठीक टाइम पर उठना, भगवान को प्रणाम करना, अगर घर में मूर्ति है तो श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोजन बनाना, भोग लगाना, कुछ गीत गाना, विशेष पर्व पर जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी या गौर पूर्णिमा आदि अवसर पर भगवान का विशेष श्रृंगार करना, विशेष भोग लगाना, ये सब धर्म है। और इसके अलावा भगवान के बारे में कुछ पढ़ना, जैसे भागवत शास्त्र और कुछ मंत्र जपना, आधा घंटा एक घंटा 10 मिनट भी करे, करना चाहिए। कुछ मंत्र जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान के जो भक्त हैं उनसे प्रेम करें, विशेष प्रेम करें, सबके प्रति सहानुभूति रखें, ये तो धर्म है सबका। लेकिन भगवान के भजन को कोई बतावे कि जरूरी नहीं है और एक काम धंधा जरूरी है, तो बुद्धू आदमी है, उसको समझ में नहीं आ रहा। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। गुरुदेव जी, हमने कहीं पढ़ा हुआ था कि जो पूजा करते समय नींद आ रहा है या और एक आधार है, कहते हैं कि पूजा करने वाले के अंदर पाप अधिक है, क्या है सकते
नहीं? पूजा कर रहा है तो उसमें पाप है ही नहीं। जब सारा पाप खत्म हो जाता है तब व्यक्ति पूजा चालू करता है। अगर कभी मान लीजिए झपकी आ गई या मन इधर उधर चला गया तो ये कोई बहुत पाप नहीं है। हाँ, ये है कि अब पूजा छोड़ करके जा करके सो जाए तो ये तो अपराध है। हाँ, तो पूजा करते करते आ सकती है नींद, लेकिन उसका उपाय करना चाहिए। कितना देर पूजा करेगा आदमी? मान लीजिए आरती कर रहा है तो आरती करने में कितना टाइम लगता है? क्या उस समय भी सो जाएगा और आरती हाथ से गिर जाएगी? आए, माला करते करते नींद आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं करते हैं वो ठीक है, पुण्यात्मा है। नहीं करने वालों से मालक करने वाला कई गुना श्रेष्ठ है, भले नींद आवे चाहे कुछ भी हो, मालक करने वाला बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करना ही चाहिए। बात यह है कि जीव को ऐसा शरीर मिला है कि इसमें तंद्रा निद्रा आदि आएगी ही, इसको रोका नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि कम आवे नींद। लेकिन एक आध बार अगर झपकी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दे, अब नींद आ रही है तो क्या कर।
एक बात, जी
ये माता जी का प्रश्न है कि बांके बिहारी जी का पर्दा बीच बीच में आता रहता है। ठीक है, उत्तर दे रहे। पूछ रहे क्यों आता है। एक बार की बात है, बांके बिहारी मंदिर में हाथरस से लड़की आई थी, तो वो ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को एक टक देखने लगी, और इतना बांके बिहारी जी की आंखों से उसकी आंखें मिली। वास्तव में वो गोपी थी, अवतार थी एक गोपी का। भगवान उसके प्रेम में पड़ गए और जब वो जाने लगी तो वो अल्टर से उतर करके उसके साथ जाने लगे। हाँ, तो भगवान से पूछा पुजारियों ने, वहां हाहाकार करने लगे क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की मुझे आग गड़ा करके देख रही थी बहुत, मैं इसके प्रेम में हूं, मैं भी इसी के साथ रहू। मैं वो लोग मनाए और क्या उपाय करें, आप रहेंगे, ऐसा काम मत कीजिए, मत जाइए वृंदावन से। तो भगवान ने कहा कि हमको कोई पूरा नजर से न देख पावे इसके लिए बीच बीच में पर्दा डालते रहो, मैं नहीं चाहता हूं मुझे कोई बहुत देर तक देख। ऐसे बताते हैं वृंदावन के गोस्वामी लोग। नहीं, वो एक स्त्री थी। हाँ, बहुत दूर नहीं गए थे, बहुत दूर नहीं गए थे भगवान। हाँ हाँ, तो पता तो है आपको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक जी। हाँ हाँ जी, इस विषय में तो बहुत मतभेद है। अभी बात है कि जो गुरु धारण करना चाहता है वो क्या चाहता है, कैसा गुरु चाहता है। मान लीजिए कोई पाकिट मारना सीखना चाहता है तो किसी पाकिट मार से दीक्षा लेगा ना। वो क्या चाहता है, उसको चाहिए क्या, जनता क्या चाहती है, जैसा चाहती है उसके लिए वैसा गुरु चाहिए। मूल बात ये है कि गुरु की जरूरत किसको है, शिष्य को ना, किस लिए, वो क्या चाहता है जिसमें गुरु हेल्प करे उसको। मान लीजिए कोई मेडिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, डॉक्टर के पास जाएगा, प्रोफेसर के पास पढ़ने के लिए। चाहता क्या है तो उसके अनुसार गुरु के लक्षण शास्त्रों में जहां तहां बताए गए। अगर भगवान का प्रेम चाहता है, वैकुंठ धाम चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है, तो उसके लिए बताया गया है कि उसे वैष्णव गुरु धारण करना चाहिए, भगवान का भक्त हो, उस शास्त्रों को पूरा पूरा जानता हो और भगवान में उसकी पूर्ण निष्ठा है, भक्त है और शांति है, क्रोध नहीं, राग नहीं, कुछ नहीं, इस भागवत में बताया गया। तो वो तो जो गुरु धारण करने के लिए उत्सुक है और कृष्ण को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, उसके लिए गुरु का लक्षण बताया जाता है। तो ये सब प्रश्न अपने लिए अकेले करना चाहिए, समाज को इस तरह से नहीं बताया जा सकता। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, कुछ शांति मिले, और किसी वर्ग विशेष का आदमी है तो उसको ये कह करके कि भाई वैष्णव गुरु होना चाहिए, एक डिस्टर्बेंस भी होता है, बार बार झगड़ा हो जाता है। और इसीलिए मैं तो कह देता हूं कि भाई भगवान के बारे में पूछिए, हमसे गुरु के शब्द आना नहीं चाहिए मेरे सामने, गुरु के बारे में मत पूछिए। मैं आपको भी कह रहा हूं कि गुरु ये सब टाइटल, ये सब टॉपिक छोड़िए, ये बहुत भ्रमावा है, कई लोगों को दुख भी लग सकता है कई तरह से। इसलिए हमारे कहने से मानेंगे आप किस लिए पूछ रहे हैं। मानने के लिए ना, कि केवल भाषण के लिए भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, सब प्रकार की पूजाओं में, आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ और उनसे भी बढ़ करके है उनके भक्तों की आराधना, ये भी कहते हैं शास्त्र कह रहा है, जो भगवान शिव कहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान विष्णु ही पूज्य है और उनके भी जो मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण पूज्य हैं और जो भी विष्णु तत्व हैं, भगवान श्री राम, नृसिंह, वामन, नारायण, ये सब पूज्य हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और गौर रूप से देवताओं का भी आदर करना चाहिए, देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य आराध्य जो इष्ट देव है वो तो विष्णु है। उनका प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किस उद्देश्य से। तो शास्त्र कहता है कि भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, यही जीवन का लक्ष्य। वास्तविक ईश्वर कौन है, उनके साथ अपने संबंध को जानना और उस संबंध के अनुसार काम करना, भगवान से प्रेम करना, यही जीवन का लक्ष्य। तो भगवान को जानने के लिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, यही है हमारा कार्य, यही करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में जप करना, बोलना, वंदना करना, पूजा करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान को अपना मित्र समझना और भगवान को सब कुछ अर्पित करना, यही साइंस सीखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और ऐसा करके भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाना चाहिए रोज रोज रोज, यही उद्देश्य है। वो तो सत्य है ही ना, जिसके घर में भागवत रखा रहता है तो पढ़ने पर तो महाकल्याण होगा ही, केवल रखा हुआ है घर में या केवल एक श्लोक कहीं दीवार पर लिखा है, चाहे चौथाई लिखा गया, चौथाई श्लोक लिखा गया है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मान लीजिए चौथाई श्लोक, उसको भी कोई देखेगा पढ़ेगा तो वहां भगवान की स्मृति आएगी और भगवान वहां साक्षात विराजते हैं। और जहां भगवान रहते हैं वहां विजय है, वहां सुख है, विद्या है, सब कुछ है, वहां दुख नहीं हो सकता। तो वो तो संभावना के लिए, और यदि नहीं संभव है भागवत रखने के लिए तो कम से कम श्लोक तो लिखवा लेना चाहिए, या श्लोक लिख करके टेबल पर भी रखना चाहिए, वहां भगवान का निवास है। तो जो शास्त्र में बात है वो बिल्कुल फैक्ट है, अब हम इस पर क्या कमेंट देंगे। तो संस्कृत सीधा साधा है और बोला हुआ है, भगवान स्वयं बोले हैं ब्रह्मा जी से कि जिस घर में भागवत रहता है वहां मैं रहता हूं। तो इसका अर्थ ये है कि भागवत रोज पढ़ना भी चाहिए, नहीं कि रख दिया बस भगवान आ गए काम हो गए। पढ़ने की ज्यादा महिमा भगवान बता रहे हैं सुनने की। हाँ तो उन्हें उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान नहीं, पूरे पाप नष्ट हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन इस तरह से निरपराध नाम लिया जाए तब पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपराध का मतलब होता है उस वस्तु की शक्ति को रोकना, जैसे बिजली का तार है, अगर उस पर कवर न हो प्लास्टिक का तो आप छुइए देखिए कितनी उसकी शक्ति है, वो करंट मारेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर आप प्लास्टिक चढ़ा दिए और इसके बाद छुइए चाहे कपड़ा भी पसारिए वो नहीं मारता। तो भगवान नाम का अपराध एक प्लास्टिक जैसा कवर चढ़ा दिया गया तो नाम की शक्ति आ नहीं पाती, समझे ना। हाँ नष्ट हो जाता है। एकादशी रखे अगर भगवान का नाम ले रहा है, एकादशी व्रत कर रहा है, ये शब्द है। ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं खाया बस व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं खाने के लिए तो ये अनशन करने वाले राजनेता भी अनशन करते हैं, और उसे क्या होता है। इस दिन भगवान को विशेष प्रणाम करना, विशेष जप करना, पूजा करना, इसको व्रत कहते हैं। तो इसको कोई करे तो उसका पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद आ जाए, जैसे मान लीजिए बिजली ऑन किए, आप स्विच ऑन किए तो अंधकार तो भाग ही जाता है ना, लाखों बरस से अंधकार है हो इस रूम में, मान लीजिए लाख बरस का पुराना हो घर और इसमें अंधकार भरा है, लेकिन बिजली ला करके और स्विच ऑन करेंगे तो अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत दिन से था इसलिए नहीं भागूंगा, उसको भागना ही है क्योंकि उसका विरोधी वस्तु आ गया। तो भगवान के नाम से, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान को का दर्शन करने से पाप निश्चित दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भले व्यक्ति को पता लगे या न लगे, चाहे दूसरों को भी पता लगे या न लगे, लेकिन पाप तो नष्ट हो ही जाता है क्योंकि शास्त्र बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं इस बात को। एकादशी व्रत करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। कौन किसका युग बीत गया माला जपते जपते, कोई है और उसका मन नहीं फिरा? जो ऐसा कहता है उसको बैठा करके और जपवाइए, जपो जरा, एक युग बिताओ, एक युग छोड़िए सप्ताह बिताओ, सात दिन अखंड जप करो, माला फेर जुग गया गया न मन का फिर। हाँ तो माला फेर रहा होगा ना, नाम जप करना दूसरी बात है, माला पर नाम जप करने वाले का चित भगवान में लग ही जाएगा। केवल माला फेर रहा है और जप नहीं कर रहा है तब तो बोलना चाहिए, भगवान नाम बोलना चाहिए। आप क्यों इस बात को पूछ रहे हैं? लोगों के कहने से क्या हुआ, लोग पूरे शास्त्र पढ़कर बोल रहे हैं कि अखबार पढ़कर बोल रहे हैं? प्रश्न करने में
ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो संशय है उसे पूछें। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछ रहा था, किसी देश से देश से देश से, वो लोग ऐसा कहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं एंड व्हाट यू से, देश से देश से, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, व्हाट यू से, ऐसे उनका टेप है प्रभुपाद जी का। तो एक फैशन हो गया है पूछने का, ऐसे लोग कहते हैं ऐसे कहते हैं, दुनिया कुछ भी कहे आपको क्या संशय है ये पूछना चाहिए, हमें इस बात का संशय। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि वो लोग ऐसा कहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हमको ये जिज्ञासा है, और एक एक बात क्लियर करते चलना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उससे संशय खत्म हुआ कि बढ़ा कि आधा खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, ये बताना चाहिए जनता को। जिनके बीच में आप प्रश्न कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि ठीक है हमारा संशय खत्म हुआ और नहीं हमारा और डाउट बढ़ गया, ये भी बताना चाहिए। और जो प्रश्न कर रहे हैं एकादशी के विषय में तो एकादशी व्रत करने के लिए पूछना चाहिए, यह ऐसे नहीं कि समाज में ऐसे पूछें कि कह दे हाँ एकादशी से कोई फायदा नहीं, तो इस प्रकार की बात करने वाला भी पापी होता है। बात यही पूछनी चाहिए कि उस लोगों का उत्साह बढ़े भगवत धर्म में, एकादशी करने में, भगवान का नाम जपने में, मंदिर जाने में, भगवान को प्रणाम करने में। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जनता का मन और उत्साहित हो और बढ़े। जैसे उन्होंने पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि काम धंधा करें, ठीक से ऑफिस जाएं, भगवान के भजन की क्या जरूरत है, लेकिन वास्तव में प्रश्न को इस तरह से पूछना चाहिए कि उत्तर उसका ठीक से आवे, हम सुने, और जिसे जनता पर भी प्रभाव पड़े, जिस लोगों को ज्ञान हो सच्चा सच्चा। केवल इसके लिए नहीं कि हाँ एक प्रश्न पूछा जाए, तर्क वितर्क, और ये देखा जाए कि ये स्वामी क्या बोल रहा है, बाकी उसका उत्तर तो आदमी शोध करके रखा है, लेकिन यही जानना चाहता है कि ये जो वक्ता आया है क्या कह रहा है। जनता के हित के लिए प्रश्न होना चाहिए। इच्छाओं को हटाया नहीं जा सकता है, इच्छामय जीव है, उसको करना चाहिए कि इच्छा न होते हुए भी वो रास्ता पकड़ना चाहिए जो भगवान के धाम में ले जाए। जैसे मान लीजिए किसी की बॉम्बे जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसको अगर बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया जाए तो चला जाएगा, इच्छा हो या न हो, है ना। जिसको जानकारी भी नहीं है, कुत्ता को चढ़ा दीजिए ट्रेन पर, जैसे गोल्डन एक्सप्रेस है चाहे जो भी है राजधानी है, किसी कुत्ता को बैठा दे, उसको बेचारे को बॉम्बे संबे का कोई पता नहीं, फिर भी पहुंचेगा, क्योंकि साधन पकड़ा है वो, उस साधन है भगवान के धाम में जाने का, ये नाम गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपेगा वो भगवान के धाम में जाएगा ही, और धीरे धीरे उसकी इच्छा भी जाने की हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी अन्य वासना। लेकिन मुख्य है कि उसे जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, भागवत पढ़ना, भागवत की कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, नाम जप करना, ये ऐसे साधन है जो जीव को भगवान के धाम में ले ही जाते हैं, प्रेम उत्पन्न करा देते हैं, वही करना चाहिए। अब इच्छा निकालने के फेर में आदमी पड़ेगा, ये कभी संभव होगा ही नहीं, और इच्छा निकलेगी तो साधन करने से ना, जप करने से। सभी शास्त्र ही कहते हैं जप करो जप करो जप करो, भगवान का कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो, वो करके देखना चाहिए ना, इच्छा तो रहेगी ही, इच्छा निकाल पाना यह असंभव होता है, भगवान की कृपा से भगवान के भजन से निकलता है। केवल ऐसे बैठ करके कोई आदमी चिंतन करे कि इच्छा न रहे इच्छा न रहे, वो मन तो और जोर से भागेगा इधर उधर। सो जाता है आदमी तब भी इच्छाएं सपना के रूप में दिखाई पड़ती, सपना में कौन कहां है, लेकिन अपना मन ही तो कई सृष्टि कर लेता है। जो चीज देख रहा है सुन रहा है सब वही सपना में सृष्टि कर लेता है, कोई चीज नहीं है उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन तो जब सोने पर भी इच्छाएं साथ नहीं छोड़ती हैं, जागृत में कैसे छोड़ेंगे। पर सब कुछ ठीक हो जाएगा एक काम करने से, वह है भगवान का नाम जपने से, शास्त्र को होता है, और विशेष करके महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। एक बार एक भक्त बोल रहे थे इस्कान के, तो लोगों को कहे कि भगवान को जो प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से बातचीत करना चाहते हैं, तो भगवान का नंबर लेकर के आया हूं मैं, टेलीफोन नंबर। तो बहुत लोग जिज्ञासु हो गए, वो कहे कि भाई लेकिन यहां 10 डिजिटल चलता है 10 नंबर, लेकिन गोलोक का जो नंबर है वो 16 अक्षर का है, 16 अंक है। ठीक है ठीक है, यहां तक एक दो आदमी कॉपी निकाल लिए लिखने के लिए, तो वो कहे कि हाथ ऊपर कीजिए और बोलिए नंबर याद कर लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और इसको जिह्वा के टेलीफोन से डायल करना है, यहां डायल करना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसमें कोई संदेह नहीं है वास्तव में। हाँ कुछ है।
मेरा प्रश्न है कि छठे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण को समझाते हुए बता रहे थे कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाए। तो हमें मेरा प्रश्न ये कि हमें कैसे पता चले कि हमारे जो कार्य कर रहा हो रहे वो उसे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या उनको प्रसन्न हो रहे हैं।
तो भगवान की सेवा में लगी हैं, अपने को तो पता होना चाहिए ना। कि हमारी वाणी हमारा हाथ हमारा पैर हमारी आंख भगवान की सेवा में लगे हैं, हमारे कान लगे हैं, इसको तो स्वयं जानकारी होनी चाहिए ना कि भगवान का मतलब क्या है और कैसे इनको लगाया जाता है। जब भगवान की कथा को हम सुनते हैं इसका मतलब है कि हमारे कान लगा हुआ है भगवान की सेवा में, आंख से हम भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों को देखते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो ये आंख लगी हुई है सेवा में, है ना। ये भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो भगवान आंख से देख करके कर रहे हैं, नासिका से यदि हम फूल सूंघते हैं भगवान पर चढ़ाई हुई माला या तुलसी को सूंघते हैं तो हमारी नाक भगवान की सेवा में लगी हुई, और त्वग इंद्रिय से भी हम भक्तों के चरण का स्पर्श करते हैं या भगवान के श्री विग्रह को टच करते हैं, तो इसका मतलब हमारी स्पर्श इंद्रिय भगवान की सेवा में है, और मन यदि भगवान के रूप का गुण का लीला का चिंतन कर रहा है, भगवान के प्रचार के बारे में सोच रहा है, भगवान के जस को फैलाने के विषय में सोच रहा है, यही संकल्प करता है ये करना है वो करना है ऐसे ऐसे, तो मन लगा हुआ है और बुद्धि से अनेक प्रकार की योजना बनाता है, यही करना है ऐसे करना है ये करना है ये उपाय करना है ये उपाय, और मैं कृष्ण का दास हूं, मैं और किसी का नहीं हूं, कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार का जो अहम भाव है उसमें हमारा अहंकार लगा हुआ है भगवान की सेवा में, तो ये तो प्रकट है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर इस तरह से हमारी इंद्रियां भगवान में लगी हैं तो पता हो जाता है कि हाँ ठीक है, ठीक स्थिति। माला गिनने के लिए रखा जाता है, गिनने के लिए हाँ, गिन करके नाम जब करना चाहिए तो उससे रोज हो जाता है रेगुलर नाम, बिना गिने करने पर कोई ठिकाना नहीं रहता है होगा नहीं होगा। माला इसलिए नहीं जपा जाता कि भगवान को हिसाब देना है, लेकिन अपने लिए रेगुलर जप हो इसके लिए माला जरूरी है। हम लोगों का तो अनुभव है कि बिना माला के ऐसे मन नहीं लगता है जप करने, और जो भक्त बहुत अग्रसर हो जाते हैं वो तो 24 घंटे जप करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया कि बड़े बड़े महात्मा रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये सब माला पर जप करते थे, जो कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है भक्त, माला पर करना चाहिए।
जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो भूख प्यास होती है, इसी चीज के हम भगवान की भक्ति करते हैं सब इच्छा आ जाती है, तो दर्शन भी आ जाती है, तो क्या करें?
क्या पहले क्या बताए, वृंदावन जाते हैं,
वृंदावन जाते हैं तो जैसे भी बात है कि भूख प्यास सब कर रहे हैं, भूख प्यास करती है, इसी चीज के हम भगवान की भक्ति करते होते हैं तो घर की कोई परेशानी आ जाती है या कोई इच्छा आ जाती है, मेरी ये इच्छा वजह से क्या करना चाहिए?
जब करना चाहिए और क्या, और भक्ति करनी चाहिए। अगर इच्छा है धन की या और परेशानी दूर करना है तो ध्रुव महाराज की तरह, द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह और कृष्ण को पुकारना चाहिए, वही उपाय है ना। तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, भगवान सब ठीक करेंगे। किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं खोना चाहिए, उन्हीं से मांगना चाहिए, अपनी विपद सुनानी चाहिए कि हम पर ये कष्ट है आप ध्यान दीजिए, और वो किस तरह से ध्यान देंगे अब वो जानते हैं। हो सकता है कि शुरू में और बढ़ा दे विपत्ति या विपत्ति दूर करेंगे, वो जानते हैं, लेकिन करेंगे हित किसी भी तरह से हित करेंगे भगवान, और अपने भक्त को बहुत दुखी नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु उनका स्वभाव है वो हेल्प करते हैं लेकिन लास्ट में करते हैं, पहले रुला मारते हैं। द्रौपदी बिल्कुल नग्न होने होने हो गई, हाथ ऊपर किया तब साड़ी बढ़ाए, क्या शुरू में नहीं बढ़ा सकते थे। गजेंद्र मरने मरने हो गए, डूबने की नौबत आई तब ग्रह को मारे, ये भगवान का कोई स्वभाव है, अपने भक्तों को वे रुला मारते हैं लेकिन बाद में तो सहारा देते ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान सहारा न दे, किसी किसी भक्त को जिज्ञासा होती है तो आखिर कब सहारा देंगे वो जानते हैं कब देंगे, लेकिन देंगे जरूर। इसलिए भगवान दुख देते हैं कि इसको अनुभव हो जाए कि दुख में कृष्ण ही एकमात्र साथी है, विपद में साथी एक देवकी के लाल दिनवा पातर भई। एक गीत भोजपुरी में गाते हैं कि रोई रोई कहली सुदामा के बहुरिया दिनवा पातर भई, मंगला पर भिखियो मोहाल दिनवा पातर। सुदामा की पत्नी रो रो करके अपने पति से कही कि इतना दिन पतला हो गया, मैंने विपत्ति आ गई कि मांगने पर भीख भी नहीं मिलता, आप जाइए द्वारका, जाइए द्वारका, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, केवल चले जाएंगे और वे बहुत देंगे। और यही हुआ भी वास्तव में, सुदामा जी मांगे नहीं भगवान से, लेकिन भगवान ने द्वारका जैसा भवन और लक्ष्मी धन सब उनको दे दिया बिना मांगे, केवल चले गए। तो इस तरह से भगवान देते हैं, भक्तों को विश्वास रखना चाहिए और उनका चरण कमल पकड़े रहना चाहिए, उनका जप उनकी पूजा चालू रखनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम। अगर कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता और भगवान के आत्मा भी करना चाहता है भौतिक कार्य करते हुए, किस प्रकार सबसे परम आराधना करते हैं।
तो वही तो बातें बताई जा रही, किसको कहा, यहाँ तो मैं कहा नहीं कि सन्यास ले लीजिए, किसी को भी कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि घर पर भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और इसके बाद अपना जो भी काम है करे व्यक्ति। गृहस्थों के लिए ही है जो भी प्रवचन किया जा रहा है किया जा रहा है। सन्यासी को तो कहा जाए कि 24 घंटा भजन करे, और महाभारत में लिखा गया है कि सन्यासी को 2 घंटा सोना चाहिए, ब्रह्मचारी 4 घंटा सो सकता है और गृहस्थ 6 घंटा सो सकते हैं, इस शास्त्र कहता है। लेकिन सन्यासी को 2 घंटा सोने के लिए लिखा गया और वानप्रस्थी को 3 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि अब उसको भगवान के पास जाने का समय है, उसे सोना नहीं चाहिए, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमेशा जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गृहस्थ के जीवन तो बहुत काम है, बच्चों का पालन करना है, पढ़ाना है, पत्नी का पालन करना है, समाज को देखना, तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि 3 घंटा उसे कम से कम भजन करना चाहिए। एक याम संस्कृत में ऐसे कहा गया, एक याम 3 घंटे का होता है, सुबह शाम सब मिला करके कम से कम 3 घंटा गृहस्थ को भजन करना चाहिए। तो 2 घंटा तो जप करने में बीत जाएगा और बाकी पूजा वूजा करे, पाठ करे भागवत का, तो रोज कम से कम 3 घंटा, और सन्यासी को 22 घंटा, क्योंकि फ्री है, उसको कोई काम धंधा है नहीं, तो वो ये करे, ऐसा लिखा गया है। ब्रह्मचारी मतलब जो गुरुकुल में पढ़ते हैं लड़के, पढ़ते थे, पढ़ने के लिए गए हैं, तो उनको तो उनके लक्षण बताए गए हैं कि शुरू में क्या लक्षण, काक चेष्टा बको ध्यानम, उनको कौवा जैसा चेष्टा करनी चाहिए, कौवा थोड़ा भी असावधान देखता है गृहस्थ को तो घर से रोटी या कुछ लेकर के भाग जाए। विद्यार्थी को इतना सावधान होना चाहिए, थोड़ा भी अवसर मिले तो किताब देखने लगे, तो शास्त्र और उसको पढ़े बोले, थोड़ा भी अवसर मिले तो एक श्लोक पढ़ने का अवसर मिले बस, और काक चेष्टा इसको कहते हैं, बको ध्यानम, और बगुला की तरह एकाग्र चित होना चाहिए पढ़ाई में, बको ध्यानम। बगुला का ध्यान देखे है ना, नदी के तट पर एक पैर पर खड़ा होकर के ध्यान करता है, और ध्यान क्या करता है, मछली को देखता है कि हमारे रेंज में कब आ रही है, मछली के आते ही बस गप से पकड़ लेते, ऐसा ध्यान विद्यार्थी को रहना चाहिए, अपने टेंशन की हमें पढ़ना है पढ़ना है। स्वान निद्रा तथा ही बच्चा, और सोना चाहिए कैसे, कुत्ता की तरह, कुत्ता थोड़ा सा सोता है तुरंत फिर भौं भौं करने लगता है, कभी अखंड एक आध घंटा नहीं सोता है, देखे है ना कुत्ता। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आन्हर कुकुर बतासे भौंके, अंधा कुत्ता हवा चलने पर भी भौंकता है कि कोई चोर आ गया, तुरंत भौंकने लगता है, ऐसे घूम करके भौंक करके तुरंत सोता है, और अभी 10 मिनट सोया है तब तक फिर भौं भौं करने लगता है। तो विद्यार्थी को ऐसे सोना चाहिए, अभी थोड़ा सोया तब तक तो फिर तुरंत पढ़ने लगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता सवा माम कहा पांडव अश्चय की मकुरवत समझ, थोड़ा सा नींद खुला फिर श्लोक बोलना चालू किया, जिसको स्वान निद्रा कहते हैं। और अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्ष, तो थोड़ा खाना चाहिए जिससे कि नींद न आवे आलस न आवे, और अपने घर पर नहीं रहना चाहिए विद्यार्थी, दूर रह करके तब पढ़ाई होती है, गृह त्याग ये विद्यार्थी के लिए लक्षण। लेकिन गृहस्थ को तो घर में ही रहना है, कई तरह का काम देखना, पैसा कमाना, मेंटेन करना है, देह को चलाना है, इमरजेंसी के लिए पैसा रखना, और फिर भी उसे 3 घंटा भजन करने के लिए कहा गया। वो थोड़ा नींद में कटौती करे, जल्दी जगे, और शाम सुबह मिला करके 3 घंटा करना कौन बड़ी बात है। तो सन्यासी होने की जरूरत नहीं है, और इस युग में तो सन्यासी भी सब गृहस्थ ही हो गए, नाम भर सन्यास रह गए, है ना। सन्यासी भी मोटर गाड़ी से चलते हैं, सन्यासी भी बहुत चाट से खाते पीते हैं, गृहस्थों को भी मात कर दिए सन्यासी लोग। सन्यास में कोई दम नहीं रहा आज के, बस गृहे वा बनेते था का सदा हरि बोले जाकर, चाहे घर में रहिए चाहे वन में रहिए, हरि का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक, एक बार एक कथा है, पता नहीं सत्य है क्या है। नारद जी को एक कटोरी में तेल दिया गया, भगवान ने दिया, कहा कि इसको संभाल करके रखो, लबालब भरा हुआ कटोरी, और घूम करके आओ। तो नारद जी कटोरी को देखते रहे कि गिरे ना, और लौट करके आए तो भगवान ने पूछा कि मेरा स्मरण हुआ। भाई कह रहे स्मरण का हो, मैं तो तेल को देख रहा था कि ये ना हुआ, ये गृहस्थों पर हुआ था। तो बताओ जो बेचारा गृहस्थ अपने बाल बच्चों को देख रहा है, ये कर रहा है, और उस पर भी भजन कर लिया, और तुम तो क्या किए, तेल को देखने में भजन नहीं किए ना। और जो गृहस्थ काम धंधा करके भी भगवान की भक्ति, मेरी भक्ति करता है, तो कितना बड़ा है। ठीक है, एक दिन तेल देने में तुम्हारा भजन चला गया, ऐसे कहते हैं, ये तो सत्य बात नहीं है, नारद जी थोड़े ऐसे भूल सकते हैं। लेकिन गृहस्थ थोड़ा भी करे तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं, परंतु नील न कर दे, जीरो न कर दे, नहीं तो नरक में उसकी मरम्मत की जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर हम बंद करते हैं, 9:30 हो गए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।